आप हैं SBS हिंदी के साथ।
सुधीश जी नमस्कार।
नमस्कार अनीता जी।
सुधीश जी, भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर जो एक लंबा विवाद चल रहा था, उस पर एक ऐतिहासिक फैसला आया है और वातावरण बिल्कुल शांत है, लेकिन क्या कोई काशी या मथुरा का मामला भी अब उठ सकता है?
देखिए, जब से ये फैसला आया है तब से व्यापक रूप से इसके प्रति लोगों ने स्वागत का भाव जताया है, व्यापक रूप से
जी,
आम मुसलमानों ने भी, आम हिंदुओं ने भी, और हिंदुओं ने इसका लाभ उठाकर को कोई बहुत ज्यादा मस्ती नहीं दिखाई है, कोई विजय उल्लास नहीं दिखाया है, और मुसलमानों ने भी साथ दिया है। अयोध्या में जितने भी लोग हैं, खासकर जो बाबा टाइप के लोग हैं, स्वामी लोग हैं, उन सब ने भी इसका स्वागत किया और बहुत ही कंट्रोल ढंग से इसका स्वागत किया है। कारण क्या है कि यह फैसला ऐसा है जो एक तरफ मंदिर की रास्ते को साफ करता है और दूसरी तरफ मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन देता है। मगर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुखियाओं ने विचार विमर्श करके तय पाया है कि ये हमारे साथ अन्याय है, मस्जिद नहीं दी जा सकती किसी को, मस्जिद की जगह किसी को बेची नहीं जा सकती, ये शरीयत में लिखा हुआ है, इसलिए हमारी जमीन हिंदुओं को दे देना ये ठीक नहीं है, इसके लिए वे अपील में जा सकते हैं। उधर ओवैसी ने, AIMIM वालों ने भी ये कहा है कि ये खैरात थोड़ी मांग रहे हैं मुसलमान, हमें हमारा हक चाहिए, और उन्होंने भी इसका विरोध किया है। लेकिन मस्जिद में कोई ऐसी छटपटाहट नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, सबने माना है कि ये मामला खत्म हुआ, एक बवाल जो था
जी,
वो खत्म होगा। मगर कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी और कुछ लिबरल, वो अभी भी इस फिक्र में है, लोगों से कह रहे हैं कि हमें गारंटी दो तुम काशी और मथुरा नहीं उठाओगे, यानी काशी का विश्वनाथ मंदिर, उसके साथ जो एक मस्जिद जुड़ी हुई है उसे नहीं उठाओ, उसे नहीं हटाओगे, और इधर मथुरा में जो मस्जिद है काशी जन्मभूमि के पास में, उसे नहीं हटाओगे। अब उसमें जो कोर्ट का फैसला है, जो करीब 1000 पेज से ज्यादा, 1070 पेज के करीब है वो, उसमें उन्होंने जज महोदय उन्हें और सुनानी मस्जिद डिसीजन है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे न्यायालय के इतिहास में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला रही है, जिसमें है उन्होंने ये कहा है कि 1991 में संसद ने कानून पास किया था जिसमें जहां जो धर्म स्थल है अयोध्या को छोड़ के, अयोध्या का मामला सब जुड़ था, अयोध्या को छोड़कर के भारत भर में जहां जो मंदिर मस्जिद गिरजे हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, वो जैसे है वैसे ही बने रहेंगे, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है
जी,
अन्य किसी स्थल को छेड़ने की बात नहीं हो सकती। साथ में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है, एक प्रेस से बात कर रहे थे तो प्रेस वालों ने पूछा, तो उन्होंने कहा देखिए अभी अयोध्या की बात है और हमें बनाना है उसे और कोई और बात नहीं है, तो उन्होंने भी लगभग संकेत दे दिया कि हमारे दिमाग में कोई और चीज नहीं है। बाकी का बीजेपी की तरफ से भी कई संकेत ऐसे आ रहे हैं कि किसी और मुद्दे को हमें नहीं उठाना है, ये हमारी सबसे बड़ी चीज थी जिसके लिए जो फैसला हो गया उसका हम सब स्वागत करते हैं। मोदी जी ने भी ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि इसको जीत हार की तरह से नहीं देखना चाहिए, नए भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
जी जी। और उधर करतारपुर साहब कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो गया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हाथों, और बहुत ही सम्मानपूर्वक ये उद्घाटन हुआ।
जी, ये बहुत अच्छा हुआ कि गुरु नानक जी के 550वें प्रकाशोत्सव के वर्ष में
जी
9 तारीख को जब ये फैसला आया है, उसी 9 तारीख को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत बड़ा जत्था लेकर के आगे गए जिसमें करीब 500 से ज्यादा सिख थे, उन्होंने 6 मिनट में बस के जरिए कॉरिडोर तक पहुंचने की यात्रा पूरी की, जिसके लिए बड़ा तरसा करते थे सिख लोग, और तरह से बहुत बड़ा कमाल का काम भी हुआ। और उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहीं से बोलते हुए इमरान साहब को इसके लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन इमरान साहब नहीं माने अपनी सीट करने के लिए, करने कई किए बिना नहीं माने, उन्होंने फिर भी अयोध्या का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा उठा ही दिया, यानी वो धन्यवाद को भी प्रॉपरली नहीं ले सके, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक चिंता हमारे खुफिया शक्तियों की है, खुफिया लोगों की है, खुफिया संस्थाओं की है
जी,
कि करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान टेररिस्टों को भी भेज सकता है भारत में या उनके जरिए प्रचारित कर सकता है, क्योंकि जो पोस्टर निकाले वहाँ के लोगों ने, खासकर जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने जो निकाले पोस्टर, उनमें भिंडरनवाला की तस्वीर को भी लगा दिया था। तो उससे लगता है कि उनका एजेंडा कुछ और है, मगर चूंकि भारत खुद चाक चौबंद है, चौकसी रखे हुए है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जी, और आइए अब चलते हैं कुछ राजनीति की तरफ, कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता मिला है।
यह बड़ी अजीब बात हुई है, 10-12 दिन तक बीजेपी कहती रही कि हम सरकार बनाएंगे, फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे और शिवसेना से जो भी मतभेद है वो दूर हो जाएंगे। शिवसेना की एक ही शर्त रही कि भाई अमित शाह जी से कोई बातचीत उनकी हुई होगी, जिसके बारे में संजय राउत जो प्रवक्ता भी है, नेता भी है बीजेपी शिवसेना के, उन्होंने बार बार कहा कि भाई हमारी बातचीत हुई थी, उद्धव जी की बातचीत हुई थी अमित शाह जी से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, और 50-50 चीफ मिनिस्टर की बात हुई थी कि आने वाले दिनों में 2.5 साल तक शिवसेना का चीफ मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहेगा। इस बात को बीजेपी ने नहीं माना, कहा कि कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था, ना कोई ऐसी बातचीत हुई थी, और बनेंगे तो फडणवीस बनेंगे। शिवसेना आखिर तक अड़ी रही अपनी बात पर, हम समर्थन नहीं देंगे, हमें 50-50 की गारंटी दो। उन्होंने गारंटी नहीं दी। इस बीच में कोशिश ये हुई कि शिवसेना के सदस्यों को तोड़ लिया जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने बड़ी निगरानी बिठाई, होटलों में ले गए उनको, और अल्टीमेटली ये हुआ कि कल फडणवीस साहब ने राज्यपाल को कह दिया, जो उनका टाइम था सरकार बनाने का
जी,
कि हम नहीं बना पाएंगे, हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। उधर शिवसेना का दावा आ गया है, क्योंकि शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, 56 उनके विधान सदस्य, बीजेपी के 105 थे, उसके बाद में 54 है शरद पवार के, तो उनको न्योता मिला है और आज 7:30 बजे तक वो कोशिश करेंगे कि सरकार बनाने के लिए लिस्ट दे देंगे, हमारे पास बहुमत है
जी।
अगर ये नहीं हुआ तो संभावना है शिवसेना को शरद पवार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, एक शर्त लगा के, कि केंद्र से बीजेपी में जो शिवसैनिक वहां पर मंत्री हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए, जिसके लिए तैयार है शिवसेना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी चाहेगी शरद पवार की पार्टी, शायद कांग्रेस भी यही चाहेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी समर्थन नहीं गया है। शरद पवार की तरफ से संकेत है कि वे कुछ कोशिश कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या होगा ये रात को ही मालूम पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पर प्रेसिडेंट रोगीला हो जाए।
तो ये अटकलें तो लगी रहेंगी। उधर नेशनल हेरल्ड में एक लेख छपा जिसको लेकर भी काफी परेशानी हो गई है वहां पर।
या देखिए, कांग्रेस की जो ऑफिशियल लाइन थी अयोध्या के फैसले को लेकर के, वो पॉजिटिव थी कि अब हमें राम मंदिर बनाना चाहिए और सबको सबने स्वागत किया और शांति और एकता बनाए रखनी चाहिए। लेकिन नेशनल हेरल्ड में एक अंग्रेजी लेखक का एक लेख भी छाप दिया, जो कि उनका मुखपत्र है लगभग, जिसमें उन्होंने, लेखक ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय से कर दी, जैसे पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय वहां की पार्टी को देख करके फैसले करता है, शायद इसी तरह से यह किया होगा। इस बात पर इनकी काफी आलोचना हुई, मीडिया में भी काफी आलोचना हुई, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगी
जी।
और लेख को कह दिया कि भाई ये लेखक के अपने विचार से गलती हो गई।
जी सुधीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
जी धन्यवाद अनिता जी।
आपके विचार हमें बताएं, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।